بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. غصے کا علاج، یہ مجلس چل رہی ہے، آج بھی وہی ہے، غصے کو قابو میں کرنے کا طریقہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غصے کے بارے میں ایک اصولی بات ایک ملفوظ میں ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ غصے میں جوش کا دفعتن آنا تو غیر اختیاری، دفعتن یعنی اچانک جوش آ جاتا ہے، وہ تو غیر اختیاری ہے، اس پر ملامت نہیں، لیکن بعد کو اس پر قائم رہ کر اس کے مقتضا پر عمل کرنا اختیاری ہے. یعنی اس جوش میں قائم رہ کر پھر اس پر عمل کرنا یہ اختیاری ہے، اور اختیاری فعل کا ترک بھی اختیاری ہے. بس اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنا اختیاری ہے، اور بار بار اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنے سے تقاضا جوش کا بھی مزمحل ہو جائے گا. آگے اس کی تشریح سمجھو. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ غصہ آنے پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو جھڑک دیا، کسی کو مار دیا، اب اس پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی. اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اس غصے کا علاج ہی یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو، خواہ غصے کے اندر کتنا ہی جوش آ رہا ہو، لیکن اس جوش کی بنیاد پر کوئی بات زبان سے نہ نکالے. جوش کی بنیاد پر کوئی بات زبان سے نہ نکالے، کوئی قدم آگے نہ بڑھائے، بلکہ اس تقاضے کو دبائے، اور بار بار اس تقاضے کو دبائے گا، دبائے گا تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس جوش میں بھی کمی آ جائے گی، اور غصے کا جو ابال ہوتا تھا، جو جوش ہوتا تھا، وہ بھی کم ہو جائے گا. غصے کا علاج ہی یہی ہے کہ جتنا اس غصے کو پیوں گے اتنا ہی یہ قابو میں آئے گا. غصے کا علاج کیا ہے؟ جتنا اس کو پیوں گے اتنا ہی قابو میں آئے گا. جی، تو جتنا اس غصے کو اور جتنا اس غصے کے تقاضے پر عمل کروں گے اتنا ہی اس غصے میں اضافہ ہوگا. جی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، کہ اللہ جل شانہ کو انسان کا کوئی گھونٹ پینا اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ پینا محبوب ہے. اللہ، غصے کا گھونٹ بڑی عبادت ہے، غصے کا گھونٹ پینا بہت بڑی عبادت ہے. یعنی پانی کا گھونٹ پینا، شربت کا گھونٹ پینا، دودھ کا گھونٹ پینا سب جائز ہے، لیکن غصے کا گھونٹ پینا محبوب ہے. جائز نہیں، محبوب ہے، عبادت ہے. اس لیے کہ غصے کا گھونٹ پینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کے ڈر سے اور اس کی عظمت کے تصور سے اپنے غصے کو دبائے اور اس کو پی جائے، اور اس غصے کے تقاضے کو کچل دے اور اس کی خواہش کو پورا نہ کرے. یہ عمل اللہ تعالی کو بے انتہا محبوب ہے. اللہ، دیکھو یہ بھی تو عبادت ہے. جہاں دوسری فضیلت عبادت کی پڑھتے ہیں، اس میں غصے کا گھونٹ پینا بھی بڑی محبوب عبادت ہے. جو اللہ کو محبوب ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے. अजीब गुस्से के बारे में बात है। यही मुजाहदा दर हकीकत मतलूब है, यही मुजाहदा दर हकीकत मतलूब है। जब इस दिल पर अल्लाह तबारक व ताला की खातिर चोटे पड़ेगी, पड़ती है ना, तो फिर ये दिल अल्लाह तबारक व ताला की तजल्ली गाह बन जाता है। जी, इस दिल पर चोटे पड़ेगी, मार पड़ती है कि घोट पियेंगे तो दिल पर मार पड़ती, तो फरमाया फिर क्या होता है कि दिल अल्लाह की तजल्ली गाह बन जाता है, अल्लाह की तजल्ली के उतरने की जगह। गाह कहते हैं जगह को, तजल्ली गाह बन जाता है। जैसे काबा, वो भी तजल्ली गाह है, काबा पर अल्लाह ताला की तजल्ली उतरती है, ऐसे इंसान का दिल भी तजल्ली गाह बन जाता है। तू बचा बचा के न रख उसे, तू बचा बचा के न रख इसे, कि ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। आईना साज यानी बनाने वाले। ये जितना ये दिल टूटेगा, उतना ही ये दिल अल्लाह ताला की निगाह में महबूब होता चला जाएगा। इस दिल पर जितनी चोटें पड़ेगी, उतनी ही इस दिल पर अल्लाह ताला की तजल्लियात का नुजूल होगा। हम चाहते हैं ना कि दिल पर अल्लाह की तजल्ली और नूर आए, तो फिर उस पर चोटें लगाओ, मुराकबा की चोटें लगाओ। मुराकबा करने बैठते हैं तो उसमें भी दिल पर चोटें लगती है। दिल कहता है अरे चलो जाओ, थोड़ा सा वो काम याद आया, वो काम याद आया, वो या, आप बैठे हैं। कहा नहीं जाऊंगा, बैठे, गुस्सा आया, पी रहे हैं, तो दिल पर चोटें पड़ रही है। ख्वाहिश और तकाजा हुआ दिल में कोई, आप उसको दबा रहे हैं, चोटें पड़ रही है। तो ये है, निगाह में महबूब होता चला। इस दिल पर जितनी चोटें पड़ेगी, उतनी ही इस दिल पर अल्लाह ताला की तजल्लियात का नुजूल होगा। अल्लाह ताला ने दिल के अंदर जो ख्वाहिशात पैदा की है, ये इसीलिए पैदा की है ताकि उनको तोड़ा जाए, इसलिए नहीं है कि उस पर अमल किया जाए। हदीस शरीफ में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारह। ये हदीस है, लंबी हदीस, उसका एक जुमला है, यानी जन्नत को मकरूहात से ढांप दिया गया है। यानी जितना तबीयत के खिलाफ काम है, उसको अगर छोड़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, क्योंकि जन्नत उसके पीछे ढांक दी है, उसके पीछे छुपाई हुई है, और अगर उसके मुताबिक अमल कर दिया तो जन्नत नहीं मिलेगी, नहीं किया तो मिलेगी। तो उसको जन्नत को मकरूहात से ढांप दिया गया है। मकरूहात उन कामों को कहा जाता है जिनको दिल पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की रजा के खातिर उन पर अमल कर रहा है, अल्लाह के खातिर उस पर अमल कर रहा है। मसलन सच बोलना, अच्छा गुमान रखना, दिल नहीं चाहता, लेकिन ये उसको तोड़कर और उस पर अमल करता है अच्छी तरीके से, तो फिर उन पर अमल कर रहा है, और उसके नतीजे में दिल पर चोट मार रहा है। मसलन गुस्सा आया, लेकिन अल्लाह ताला के खातिर उस गुस्से को पी गया, या मसलन दिल में शहवत की नजर डालने का तकाजा पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के खातिर नजर झुका ली। इन कामों के नतीजे में दिल की ख्वाहिशात को कुचला जा रहा है। इस कुचलने के नतीजे में दिल अल्लाह ताला की तजल्ली गाह बन जाता है, क्योंकि उसे उसके बाद जन्नत है। उसको मकरूहात यानी तबीयत के खिलाफ सारे कामों को ढांक दिया है जन्नत को, और जहन्नम को ढाका कैसे, सारे काम नफ्स के मुताबिक करने से ढांक दिया। जो करोगे तो उधर जाएंगे, उसके खिलाफ करोगे तो जन्नत में जाएंगे। इसलिए याद रखे, हमेशा जन्नत पाना है तो तबीयत के खिलाफ काम करना होगा, कदम कदम पर नफ्स को कुचलना होगा, कदम कदम पर आएगा। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आदमी एक मर्तबा ये तय कर ले, एक मर्तबा ये तय कर ले कि आरजुए खुन हो या हसरते बर्बाद हो, आरजुए खुन हो या हसरते बर्बाद हो, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे। आदमी अज़्म कर ले कि दिल में जितनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ हो रही है उनको कुचलना है। वो तो ख्वाहिशात तो आएगी, इसीलिए तो इलाज इसी को सिखाया जा रहा है कि ख्वाहिशात पर अमल न हो, वरना दिल में तो तरह तरह की ख्वाहिशात आएगी। अगर हमने अपने दिल को बनाया नहीं है तो इंसान ख्वाहिशात पर अमल कर लेगा, और दिल को बनाने की कोशिश की है तो ख्वाहिशात को कुचलेगा। उनको कुचलना है, उनको पामाल करना है, और पामाल करने के नतीजे में उन पर काबू हासिल करना है। और जब बंदा एक मर्तबा ये काम कर लेता है और अपनी ख्वाहिशात को कुचलता है तो उसका नतीजा ये होता है कि वो ख्वाहिशात मुजमहिल हो जाती, कमजोर पड़ जाती। और कमजोर पड़ जाती, याद रखो, ये ख्वाहिशात मरते दम तक खत्म नहीं होगी। ख्वाहिशात एक को दबाओगे दूसरी उभरी, उसको दबाओगे तीसरी आएगी, ये मरते दम तक खत्म नहीं होगी बल्कि बाकी रहेगी, लेकिन इनके जोश और खरोश में उनकी शिद्दत में कमी आ जाती, एतदाल आ जाता है। वो तो आएगी, अब उस पर अमल नहीं करेगा। वो पहले अमल कर लेता था, इसलाह उसका नाम है कि अब वो उस पर अमल नहीं कर रहा है। इस बात की अलामत है कि अब इसकी इसलाह हुई है। और जब इस दिल पर बार बार चोट पड़ने के नतीजे में उसकी ख्वाहिशात कमजोर पड़ जाती है तो अल्लाह ताला हलावत ईमान अता फरमा देते, फिर क्या मिलता है? हाँ, ईमान का टेस्ट मिलता है। हलावत ईमान को अगर तर्जुमा करे, ईमान का टेस्ट मिलता है, उसको कहते हैं हलावत ईमान अता फरमा देते। और अपनी मारिफत, एक तो ईमान का टेस्ट मिलता है और दूसरा अपनी मारिफत अता फरमाते हैं, यानी इंसान अब अल्लाह को पहचानता है। जी हाँ, अपनी मारिफत, और उस हलावत ईमान और मारिफत की जो लज्जत हासिल होती है, जो टेस्ट हासिल होता है, उसके मुकाबले में ख्वाहिशात की लज्जत हेच दर हेच है, यानी कुछ भी नहीं, मच्छर का पर हो जाती है। फिर ये ख्वाहिशात का जो एक टेस्ट हमें मिल रहा है, जिसके पीछे हम रात दिन भाग रहे हैं, लेकिन जिस वक्त इस दिल पर चोट पड़ेगी, ईमान का टेस्ट मिलेगा, अल्लाह की मारिफत मिलेगी, फिर उसके बाद ये ख्वाहिशात की लज्जत बेकार हो जाएगी। क्या इसमें कोई मजा है ही नहीं? इसलिए क्या करना चाहिए? इसको ईमान का टेस्ट दे दोगे तो दुनिया का टेस्ट छोड़ देंगे। इसको तो टेस्ट चाहिए, लज्जत चाहिए। अल्लाह ताला अपने फजल से हम सबको हलावत ईमान और अपनी मारिफत अता फरमा दे। आमीन। इस हलावत के आगे गुनाहों की और ख्वाहिशात की लज्जत कोई हकीकत नहीं रखती। इस हलावत के आगे गुनाहों की और ख्वाहिशात की लज्जत कोई हकीकत नहीं रखती। और ये हलावत मुफ्त नहीं मिलती, ये मजा और ये लज्जत मुफ्त नहीं मिलती, लेकिन ये हलावत मुफ्त में नहीं मिलती। आज हमें गुनाहों की लज्जत आती है, नेकियों की लज्जत नहीं आती। हालांकि नेकियों में भी एक लज्जत है और गुनाहों में भी एक लज्जत है, लेकिन गुनाहों का लज्जत हमें मिल रही है और नेकी की लज्जत नहीं मिल रही। यही इस बात की अलामत है कि हम बीमार हैं। उसकी मिसाल जैसे बिरयानी बनाई तो दो आदमी खा रहे हैं और एक ने कहा कि अरे क्या टेस्टी बनी है, क्या लज्जत है इसमें। दूसरा कहता है इसमें कोई लज्जत नहीं, कड़वी है। तो अब क्या कहोगे? तो आप यही कहोगे कि भाई ये बीमार है इसलिए उसको लज्जत नहीं आ रही है। इसी तरीके से नेकी में भी लज्जत है, लेकिन जिसको नहीं आ रही है वही लग रहा है कि ये बीमार है इसलिए उसको लज्जत नहीं आ रही। जब इसका इलाज होगा तो उसको नेकी में लज्जत आएगी और गुनाहों में फिर उसको कड़वाहट मिलेगी, फिर गुनाहों में उसको कड़वाहट लगेगी। बोले इसमें क्या लज्जत है, तो कड़वा है। तो अब बताओ इस एतबार से हम सब बीमार है कि नहीं? जब बीमार है तो इलाज जल्दी शुरू कर दो, मौत से पहले पहले। ये हलावत ये लज्जत मुफ्त में नहीं मिलती। बल्कि इन ख्वाहिशात नफ्स पर चोट मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, और चोट मारने से शुरू शुरू में बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी मशक्कत होगी, लेकिन इस मशक्कत को बर्दाश्त करके चोटे मारते रहो, मारते रहो, रफ्ता रफ्ता ये दिल टूट टूट कर अल्लाह ताला की तजल्लीगाह बन जाएगा। अल्लाह, दिल टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा दिल, उसको तोड़ना ही है। इसको जितना तोड़ेंगे ना, इतना ये तजल्ली गाह बनेगा जी। इसको तोड़ना है। और आज हर इंसान कहता है मेरा दिल नहीं टूटे, दिल नहीं टूटे, सारी चीजें टूट जाए लेकिन दिल न टूटे। और अल्लाह ताला फरमाते नहीं मेरे बंदे, मैं तुझे तेरे दिल को तोड़ूंगा तो ही मैं आ सकता हूं। तू चाहता है कि मैं तेरे दिल में आ जाऊं, तो कहा ऐसे नहीं आऊंगा, दिल को तोड़ूंगा तो फिर मैं दिल में आऊंगा। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मैं तो टूटे हुए दिलों में होता हूं और दिल हम तोड़ते नहीं। टूटे हुए दिलों में अल्लाह ताला होता है। इसलिए फरमाते अल्लाह को ढूंढना हो तो जिस तरीके से मस्जिद में जाते हैं, ऐसे ही टूटे हुए दिलों के पास जाओ, वहां अल्लाह मिलेगा। बीमार का दिल टूटा हुआ होता है, फरमाए उसके पास जाओ, हदीस में आता है कि मैं वहां होता हूं। एक मिस्किन का दिल टूटा हुआ होता, वहां जाओ, उनके साथ दोस्ती करो, मैं वहां होता हूं। और एक जलील हो गया होता है किसी वजह से, उसका दिल टूटा हुआ होता, अल्लाह ताला फरमाए उसके पास जाओ, मैं वहां होता हूं। जी आज तो हम कहां जाते हैं, जिसके दिल सही सालिम होते हैं, जिनकी जिंदगी बड़ी ठाट बाट होती है, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके पास जाते हैं, वहां माल तो मिल सकता है, अल्लाह नहीं मिल सकता। तो फरमाया दिल दिल टूट टूट कर अल्लाह का ताला की तजल्ली गाह बन जाएगा। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हय साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा करते थे, ये कह के कासे साज ने प्याला पटक दिया, ये कह के कासे साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे उसको बिगाड़ के, अब और कुछ बनाएंगे उसको बिगाड़ के, अभी तोड़ के फिर नया बनाएंगे ना। जिस जात ने बड़ा खूबसूरत प्याला बनाया दिल का, उसी जात ने कहते हुए इस प्याले को पटक दिया कि अब उसको बिगाड़ कर और कुछ बनाएंगे, और कुछ बनाएंगे। इस दिल पर चोटे मारे, उस पर हथौड़े चलाए, ये सब क्यों किया, ताकि उसको बिगाड़ कर और कुछ बनाएंगे। कौन तोड़ रहा है? अरे अल्लाह ही तो तोड़ रहा है। क्यों? कि अल्लाह को आना है। अल्लाह उस दिल को ऐसा बनाते हैं कि मैं उसमें रह सकूं। अभी तेरा दिल ऐसा है कि मैं उसमें नहीं आ सकता, इसलिए अल्लाह उसको तोड़ते हैं और सबको निकालते हैं। अब जब सब निकल गए, जब दिल टूटा तो सब निकल गए, तो जब दिल टूटा सब निकल गए का अल्लाह ताला कहते हैं अब मैं आऊंगा तेरे दिल में। आज बताओ हमारे दिल में सब है, अल्लाह नहीं है। जब टूटेगा सब निकलेंगे, फिर अल्लाह होगा जी। इसलिए दिल टूट तोड़ते हैं अल्लाह, तो दिल का तोड़ना ये तो अच्छी अलामत होती है, गोया अल्लाह हमारे दिल में आना चाहते हैं। क्योंकि जब दिल टूटेगा तो सब एक एक करके भागेंगे ना, सब भाग जाएंगे, बोले अभी इसमें रहा क्या, तो सब टूट गया, तो सब भाग जाते एक एक करके। जब सब चले गए, अब अल्लाह कहते हैं मैं अब आऊंगा। अब हम नाराज हो जाते, हमारा दिल टूट गया है, क्या हुआ, सब ने हमारी दोस्ती तोड़ दी, हमारा दिल टूटा। दोस्ती तोड़ने का मतलब क्या, दिल तोड़ा, अब टूटी नहीं है, वो अल्लाह ने तोड़ा है कि सबको अलग कर दिया। कहा अब कौन है, कहा अब मैं आऊंगा तेरे दिल में, तो सबकी मोहब्बत निकाल, अब मेरी मोहब्बत इसमें आएगी जी। अल्लाह, बर्बाद दिल पर तजल्लियात का नुजूल, किसी ने इस पर बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, बताने महोश उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, बताने महोश उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, जिसे बर्बाद करते हैं उसी के दिल में रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, जिसे बर्बाद करते हैं उसी के दिल में रहते हैं। लिहाजा ख्वाहिशात को कुचल कुचल कर जब दिल को बर्बाद कर दिया जाता है, कुचल कुचल कर दिल को बर्बाद कर दिया जाता है, तो उस दिल पर अल्लाह ताला का नुजूल और जलाल होता है, उनकी तजल्लियात जाहिर होती है। जी, उस दिल पर फिर क्या होता है, अल्लाह ताला का नुजूल और तजल्लियात जाहिर होती है। इसलिए आपने देखा होगा ना, कभी कभी दिल टूटता है कि नहीं टूटता, सुनने वालों में ऐसे होंगे उनका दिल कभी कभी बहुत टूट जाता है, कोई ना कोई जरिया बन जाता है कुछ ना कुछ, तो दिल टूटता है ना, तो बस उस वक्त अल्लाह से मांगो, अल्लाह मिल जाएगा। जी, अल्लाह मिल जाएगा, उस वक्त अल्लाह मिल जाएगा। हाँ, दिल पर जरा नश्तर लगाइए। हजरत सूफियाई किराम और औलियाई किराम, उनसे भी आगे सहाबे किराम, उनसे भी आगे अंबियाई किराम अलैहि सलाम, उनके जो कुलूब मुजल्ला मुजक्का मुसफ़ा होते हैं, यानी साफ होते हैं, मांजे हुए, और जो साफ होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, उनके भी कुलूब, इसलिए अंबिया को देखो कितने दिल टूटे हैं, वो भी इसी तरह होते हैं कि हजरत अपनी ख्वाहिशात को तोड़ते हैं और उनको कुचलते हैं। उनके अपनी ख्वाहिशात को तोड़ते हैं और उनको कुचलते हैं, क्योंकि जब ख्वाहिशात को कुचला जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस दिल को मुजल्ला मुजक्का बना देते। इसलिए हयात तो सहाबा में है कि एक सहाबी को एक जगह पर भेजा जाता, गजवे से वापस आते, अभी घर में बैठकर बहुत सारे घर के काम हैं वो पूरे भी न होते, और दूसरे तकाजे पर भेज दिया जाता था, उनका दिल टूटता था, यहां तक कि उसी हाल में मौत आ जाती, टूटे हुए दिल, मौका ही नहीं होता। अब तो हर इंसान की ख्वाहिश होती कि मैं जरा घर पे जाऊं, मैं जरा वहां बैठू, कुछ देखू, और उनको दूसरे तकाजे पर भेज दिया जाता। तो उनके दिलों को साफ किया था, मुजल्ला मुजक्का बना देते हैं, इस दिल में फिर अल्लाह ताला की मारिफत का नूर आता है। इसीलिए जो तबलीग का काम जो अल्लाह ताला ने जारी फरमाया था, ये क्या था कि तुम अपनी जो सेटिंग में बैठे हुए हो उसको तोड़ो। उसको तोड़ा जाता था, कोई कारोबार छोड़ के जाता, जब वापस आता तो कारोबार का पूरा वो हो जाता था, उसमें इंतशार होता था, दिल टूटता है, फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, मांगता है। कभी कभी जमात में जाते हैं तो कभी तबियत के खिलाफ खाना होता है, तबियत के खिलाफ मस्जिद होती है, तबियत के खिलाफ वहां की वहां फर्श होता है, और सब कुछ होता है, वहां दिल टूटता है और अल्लाह से मांगता है, फिर अल्लाह ताला उस दिल में आते हैं। तो मुजाहदा जो कराया जाता था, इस दिल में फिर अल्लाह ताला की मारिफत का नूर आता है, उसके बाद फिर उन गुनाहों की ख्वाहिशात मुजमहिल हो जाती है, फिर गुनाहों की ख्वाहिशात कमजोर हो जाती है। जी, और उनका जोश और खरोश कम हो जाता है, मगर उसके लिए इब्तिदा में इन ख्वाहिशात से कुश्ती लड़नी पड़ती है, इब्तिदा में कुश्ती लड़नी पड़ती है। मैंने भी इस मौजू पर एक शेर कहा था, कितने गूंचे मुस्तरब है दिल में खुलने के लिए, कितने गूंचे मुस्तरब है दिल में खुलने के लिए, अपने हाथों से जरा नश्तर लगा कर देखिए। इस दिल पर जितने नश्तर लगाओगे, निशान लगाओगे, उतने ही गूंचे खिलेंगे, यानी फूल खिलेंगे, उतने ही उसमें कमालात पैदा होंगे, उतने ही इसमें अनवारात और तजल्लियात हासिल होगी। अल्लाह अकबर, क्या, लेकिन नश्तर लगाना दिल के ऊपर बहुत भारी काम है। जिस्म पर तो नश्तर लगा इतना मुश्किल नहीं, लेकिन दिल पर, क्योंकि दिल बहुत नाजुक चीज होती है, इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा नाजुक इसका ना दिल, फिर उस पर नश्तर लगे तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है, वो तकलीफ भी इतनी बड़ी और उस पर अनवारात भी इतने मिलते हैं। अल्लाह, इसलिए अल्लाह वाले कभी कभी अपने मुरीदीन का भरी मजलिस के अंदर उसके दिल पर नश्तर लगा देते, सबके सामने डांट देते। ये क्या होता है? तो उसके दिल पर नश्तर लगाया, क्यों? कि इस पे जो नश्तर लगा है अगर सही तालीब होगा, अब उसमें अल्लाह के तजल्लियात और अनवारात इसमें आएंगे। ये नश्तर लगाया जाता था, लेकिन आजकल नश्तर को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती है। वरना अल्लाह वाले जब किसी को आगे बढ़ाते हैं तो उसको नश्तर लगाते, देख लेते हैं पहले। इसके किस्से भी पहले बहुत गुजर गए से कि जो आए थे सही तालिब बनकर, उनको नश्तर लगाए गए और उस पर जमे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको, उनके दिल को अपनी तजल्ली गाह बना लिया। इस मलफूज में हजरत वाला यही फरमा रहे हैं कि गुस्से का इलाज यही है कि अगर गुस्सा आ गया तो आने दो, गुस्सा आ गया तो आने दो, लेकिन उसके बाद दिल में जो ये तकाजा पैदा हो कि उठकर उसको एक थप्पड़ मारू या उसको गाली दू या उसको बुरा भला कहू, इस तकाजे को जबरदस्ती दबा जाओ और ये सोचो कि मैं अल्लाह ताला के लिए इस तकाजे को दबा रहा हूं, तो फिर उस गुस्से को पामाल करने में भी लज्जत और हलावत हासिल होगी, गुस्से को दबाने में भी लज्जत हासिल होगी इंशाअल्लाह। और जितना ये अमल करते जाओगे उतना ही ये नफ्स काबू में आता जाएगा, जितना अमल करते जाओगे उतना ही नफ्स काबू में आता जाएगा। ये मिसाल पहले भी गई कि इंसान का नफ्स दूध पीते बच्चे की तरह है। इंसान का नफ्स कैसा है? दूध पीते बच्चे की तरह है। النفس كالطفل ان تحمله شب علي حب الرضاعه وان تفطمه ينفطم، یعنی انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ابھی دودھ پیتا ہے، وہ بچہ کبھی یہ چاہے گا کہ میں دودھ چھوڑ دوں، دودھ پیتا بچہ کبھی یہ چاہے گا میں دودھ چھوڑ دوں؟ نہیں، کیونکہ اس کو تو دودھ پینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ایسے نفس کو بھی वो एक बच्चे की तरह है, गुनाहों की एक आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो मां का दूध छोड़ने पर आमदा नहीं है। दूध पीते बच्चे दूध पीते पीते 2 साल हो चुके हैं, अब अगर माँ बाप ये सोचे कि अगर इस बच्चे का दूध छुड़ाएंगे तो उसको बहुत तकलीफ होगी, रोएगा चिल्लाएगा, खुद भी परेशान होगा हमें भी परेशान करेगा, लिहाजा दूध न छोड़ाओ, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो बच्चा जवान हो जाएगा और दूध पीने की आदत नहीं जाएगी। जी नहीं जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप उसका दूध छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा दूध छोड़ भी देगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रोएगा चिल्लाएगा परेशान करेगा, लेकिन बिलाखिर छोड़ देगा। हर बच्चे के साथ यही मामला होता है। अल्लामा बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का नफ्स भी बच्चे की तरह है, अगर तुमने इस नफ्स को बेमुहार बगैर लगाम के छोड़ दिया कि जो ख्वाहिश हो रही है उस पर अमल कर रहे हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हो, तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हो तो नफ्स तुम्हें हलाकत के घड़े में ले जाकर गिरा देगा, अल्लाह गिरा देगा, और तुम कभी भी गुनाहों से नजात नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर तुमने उसको काबू कर लिया, उससे जबरदस्ती गुनाह छुड़ाने की कोशिश कर ली, तो नफ्स गुनाह छोड़े छोड़ भी देगा, बात सारी कोशिश की है। यही मामला गुस्से का है कि उसके तकाजे को दबाते रहो तो रफ्ता रफ्ता गुस्सा का जोश मुजमहिल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। जी एक गुस्से का इलाज बता रहे हैं। बाद औकात गुस्से को काबू में करने के लिए और इलाज भी मुफीद हो जाते हैं, लेकिन वो इलाज बड़े सख्त है। पहले भी बहुत सारे इलाज आए, तीनों मजलिस में अलग अलग इलाज आए, अभी एक इलाज बता रहे कि वो बड़े सख्त है। वो इलाज हजरत वाला ने इस मलफूज में बयान फरमाया, अगर तबई तौर से गुस्सा ज्यादा आ जाता हो और जरा सी बात पर हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता हो कि उस वक्त अकल ही न रहती हो, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि जिस पर गुस्सा किया जाए, गुस्सा फर्द होने के बाद, गुस्सा फरो होने के बाद या निकलने के बाद, चले जाने के बाद, मजमे में उसके सामने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, बल्कि उसके जूते अपने सर पर रख ले, एक दो बार ऐसा करने से नफ्स को अकल आ जाएगी। देखो एक इलाज ये भी है। कहा कि बेहतर कि जिस पर गुस्सा किया गया है तो गुस्सा जाने के बाद फिर मजमे के अंदर उसके सामने क्या करो, हाथ जोड़ो, पांव पकड़ो, जूतों को सर पर रख लो। अरे रे रे रे, बहुत मुश्किल काम है। शायद पढ़ते होंगे तो बहुत सो को ऐसा लगता होंगे, बोले कैसे हो सकता है। एक दो बार ऐसा करने से नफ्स को अकल आ जाएगी, जरा कर लो देखो, फिर कभी गुस्सा आए तो एक मर्तबा जरा नफ्स को कुचलेंगे ना ऐसा, तो नफ्स भी बड़ा सीधा हो जाएगा, बोले ये मुझे जलील करेगा सबके सामने, तो दो बार गुस्सा ही नहीं करेगा। यानी जिस शख्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया और हुदूद से तजावुज कर गए, तो उसका एक इलाज ये है कि जब गुस्सा खत्म हो जाए तो मजमे में उससे माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, उसके जूते सर पर रख ले। उसका नतीजा होगा कि जब अगली मर्तबा गुस्से का मौका आएगा तो उस वक्त नफ्स ये सोचेगा कि ये तो अच्छी खासी मुसीबत है, पहले तो सिर्फ गुस्से को पीना ही था, अब तो मजमे के सामने जिल्लत उठानी पड़ती है। इस डर से गुस्से के तकाजे की शिद्दत में कमी आ जाएगी। अच्छा, अच्छे अच्छे गुस्से वाले सीधे हो जाएंगे। इलाज कराना हो तो आ जाना, इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन इलाज के लिए कोई नहीं आएगा, बोले बाबा ऐसी जलील तो नहीं होना है। ठीक है, इस डर से कि गुस्से का तकाजे की शिद्दत में कमी आ जाएगी, एक दो बार ऐसा करने से इंशाल्लाह नफ्स को अकल आ जाएगी। नफ्स अंधा है ना, उसको भी अकल आ जाएगी। बहुत अजीब इलाज है, मजेदार है। मेरे एक दोस्त है जो मगलूबुल गजब है, गुस्से के बहुत तेज है, यहां तक कि अगर मां ने भी कुछ कह दिया ना तो मां पर भी गुस्सा करना शुरू कर देते। मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि फजर की नमाज में क्या जिक्र करूं। अब वो क्या पूछते हैं कि फजर की नमाज में क्या जिक्र करूं, आदत क्या है गुस्से की, यहां तक कि मां पर भी गुस्सा कर लेते हैं, और क्या पूछते हैं कि फजर की नमाज में क्या जिक्र करूं, जोहर की नमाज में क्या तस्बीहात पढ़ूं। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, पहला काम ये करो कि मां के पास जाकर उसके पांव पकड़कर माफी मांगो और कहो कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, बस ये तुम्हारा जिक्र है। क्योंकि नफ्स ने गुनाह क्या करता है और जिक्र क्या करता है, समझे, इधर गुनाह करेगा और उधर जिक्र करेगा। इसलिए अकलमंद और अल्लाह वाले क्या करते हैं, उसको जो गुनाह होता है उसी गुनाह से को खत्म करने की कोशिश करते हैं, यही उसका सबसे बड़ा जिक्र है। तो उसको क्या कहा कि फरमाया तुम्हें कुछ नहीं करना, मां के पास जाकर उसके पांव पकड़कर माफी मांगो और कहो कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी ये बात सुनकर ताज्जुब से कहने लगा कि अच्छा हजरत मैं माफी मांगू, अच्छा हजरत मैं माफी मांगू, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा ये तो तुम्हें करना होगा, जाकर माफी मांगो और पांव पकड़ो, और ये काम सब बहन भाइयों के सामने करो, अकेले नहीं, सब बहन भाइयों के सामने करो। कहने लगे कि तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें ये काम करना है। उनको अमल बहुत शाक गुजर रहा था, मुश्किल गुजर रहा था। मैं अपने तमाम बहन भाइयों के सामने मां से माफी मांगू, लेकिन उन्होंने जाकर एक काम किया। जाहिर बात है तालिब सच्चा होगा तो उन्होंने जाकर एक काम किया। जब वापस आए तो मुझसे कहा कि क्या बताऊं क्या बताऊं, उस वक्त मेरे सीने पर सांप लौट गए, यानी बहुत तकलीफ हो रही थी, आरे चल गए। मैंने कहा कि मेरा भी यही मकसद था, जब दो चार मरतबा ये काम उनसे कराया तो तबीयत एतदाल पर आ गई, जो हर वक्त गुस्से में रहते थे अब ठंडे रहने लगे। तो गुस्से का इलाज करने आओगे तो ये डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने जैसा बताया ये गोली दी और वो गोली मांग रहे थे कुछ और, कहा कि फजर में क्या गोली खाओ, जोहर में क्या खाओ, उन्होंने कहा गोली कुछ नहीं खानी, ये गोली खा लो तुम, जो सबसे ज्यादा कड़वी थी वो मीठी गोलियां थी जी, वो मीठी टेबलेट थी। क्या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और जाके माफी मांगना एक कड़वी टेबलेट है, लेकिन इसमें शिफा ज्यादा है। बहरहाल इंसान का नफ्स इन कामों को सख्त महसूस करता है, सख्त महसूस, लेकिन बाद अवकात यही करना पड़ता है। जब इंसान ये कड़वी गोली निगल लेता है तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से शिफा होती है, अल्लाह तबारक व ताला इस मरज से नजात अता फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर जी। मगर ये काम भी किसी शेख की निगरानी में करने चाहिए, खुद ब खुद नहीं, खुद ब खुद नहीं, किसी शेख की निगरानी में करने चाहिए, खुद अपनी राय से न करे, बाज औकात अपनी राय से करने से भी नुकसान हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा, अब वो भी इंसान जाकर ऐसा ही करेगा, अगर खुद ब खुद कर लिया तो नफा कम नुकसान ज्यादा हो जाता है, भी नुकसान हो जाता है और उल्टा असर पड़ जाता है, क्योंकि शेख जानता है कि कितनी खुराक दवा दी जाए, उसमें भी खुराक होती है ना, 500 मिलीग्राम की, 1000 मिलीग्राम की, 100 मिलीग्राम की, कितनी और कितनी बार दी जाए, एक बार दो बार, कितनी, अगर जरूरत से ज्यादा दवा दे दी तो मुसीबत हो जाएगी और अगर कम दवा दे दी तो फायदा नहीं करेगा, इसलिए शेख के जरिए इलाज करना चाहिए, इसलिए कि वो डॉक्टर है, वो जानता है कितनी दवा है, हर एक को अलग अलग देगा, किसी को 500 मिलीग्राम की दवा का, किसी को 2000 मिलीग्राम की देगा, क्यों कि उसके यही असर करेगी, उसको छोटी छोटी दवा असर नहीं करेगी, किसी को हल्की सी डांट देता है, किसी को सबके सामने बड़ी डांट डपट होती है, तो उसको ज्यादा पावर की दी गोली। गुस्सा का एक और इलाज, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, गुस्से का इलाज के लिए इस बात का कसरत से इस्तेजार करना भी मुफीद होता है। वो बात यह है कि तजर्बा करके देखा गया कि गुस्सा रोकना हमेशा अच्छा हुआ और जब उसको जारी किया गया तो उसका अंजाम हमेशा बुरा हुआ और दिल को कलक भी हमेशा हुआ। एक इलाज क्या है कि रोक लो, क्योंकि रोकने से गुस्सा हमेशा अच्छा ही होता है और अगर गुस्से को निकालोगे तो बुरा होता है और वो बुराई हमेशा खटकती, यानी जमाने माजी को याद करो कि जितनी मर्तबा गुस्से को रोका तो उसका अंजाम अच्छा ही हुआ, गुस्सा रोकने से नुकसान नहीं होता, और जब कभी गुस्सा किया उसके तकाजे पर अमल किया तो बकसरत ऐसा हुआ कि बाद में नदामत शर्मिंदगी हुई। अगर आदमी के अंदर जरा भी सलामती तबा हो तो गुस्सा करने के बाद, यानी जरा सी उसके अंदर यानी सलामती होगी, समझदारी होगी, तो गुस्सा करने के बाद कल्ब में जुल्मत महसूस होती है, देख लेना, और कदुरत और नदामत महसूस होती है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, यानी नरमी जिस चीज में भी दाखिल हो जाए उसे जीनत बख्शेगी। मा दखल रिफ्कु फी शैइन इल्ला जानहु व मा नजा मिन शैइन इल्ला शानहु, यानी नरमी जिस चीज में भी दाखिल हो जाए उसे जीनत बख्शेगी और जिस चीज से भी निकल दी जाए तो उसे ऐबदार बना देगी, नरमी निकल जाएगी, लिहाजा नरमी जहां भी होगी जीनत का सबब होगी, चीज खूबसूरत बन जाएगी। अल्लाह नरमी, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा गया कि तुम नरम बनो, नरम से बात करो, अगर आप नरम न होते तो लोग आपसे भाग जाते, तो जीनत का सबब, इसलिए जब गुस्सा करने से बकसरत नुकसान होता है, नदामत होती है, गुस्सा न करने से न नुकसान होता है नहीं नदामत होती है, तो फिर आदमी को वही काम करना चाहिए जिससे आदमी को नदामत नहीं होती। एक मलफूज में हजरत वाला ने इरशाद फरमाया, गुस्से में बच्चों को हरगिज न मारा जाए, चाहे उस्ताद हो या बाप हो, गुस्से में बच्चों को हरगिज न मारा जाए, चाहे वो उस्ताद हो तो भी बच्चों को न मारे और अगर बाप हो तो भी बच्चों को न मारे, बल्कि गुस्सा निकल जाने के बाद सोच समझ कर सजा दी जाए, और बेहतर सजा यह है कि बच्चों को बच्चों की छुट्टी बंद कर दी जाए, यानी उस्ताद अगर है तो बच्चों को छुट्टी न दी जाए, उसका उन पर काफी असर होता है, कहा तुम्हें आज छुट्टी नहीं मिली, कहा मुल्ला जी यानी उस्ताद मारने में इस वास्ते आजाद है कि उनसे बास पुस करने वाला कोई नहीं। बहुत सारे उस्ताद मारते, उनको कौन पूछेगा। बच्चे तो बास पुस के अहल नहीं हैं, और वालिदैन का मकोला है कि हड्डी हमारी और चमड़ा मियाँ जी का, यानी उस्ताद का। बोले हड्डी हमें दे देना, चमड़ा तुम ले लो। ये पहले बहुत मशहूर था, पहले उस्ताद बहुत मारते थे। मगर याद रखो, जिस हक का मुतालबा करने वाला कोई ना हो, उसका मुतालबा हक ताला की तरफ से होगा। अब बच्चा तो कुछ नहीं, बच्चा तो मार खा लेगा, चाहे माँ बाप मारे चाहे उस्ताद मारे, लेकिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने इसको क्यों मारा। यहां तक कि अगर काफिर जिम्मी पर कोई हाकिम जुल्म करे, यहां तक कि मुसलमान हुकूमत है और काफिर हमारे पास रहते हैं, और उस पर किसी ने अगर जुल्म कर दिया, तो हदीस में आया है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ से मुतालबा करेंगे कि क्यों उस पर जुल्म किया। बच्चों को मारने का मामला बड़ा खतरनाक है, याद रखो, बच्चों को मारने का मामला बड़ा खतरनाक है। हमारे वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि और गुनाहों की माफी तोबा के जरिए मुमकिन है, लेकिन अगर बच्चों पर जुल्म किया जाए तो उसकी माफी का मामला भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हक्कुल अब्द है, बंदे का हक है, और हक्कुल अब्द सिर्फ तोबा से माफ नहीं होता जब तक वो बंदा माफ न करे। जिस बंदे की हक तलफी की गई है, और यहां पर बंदा नाबालिग है, और नाबालिग की माफी भी मोतबर नहीं, हत्ता कि अगर वो नाबालिग जबान से भी कह दे कि मैंने माफ किया, तब भी वो माफी मोतबर नहीं, इसलिए उसको माफी बड़ी मुश्किल है। लिहाजा बच्चों को मारने और उन पर सख्ती करने में डरते रहना चाहिए। वो न पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन उसको मार कर पढ़ाना ये अच्छी चीज नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में तो मेहनत करना है, न पढ़ना उसकी फितरत हो। मदारिस में बच्चों के मारने पर पाबंदी, इसलिए गुस्सा खत्म होने के बाद सोच समझकर जो सजा चाहे दे दो। तो गुस्से के बारे में चंद उसूल है जो हजरत वाला ने बयान फरमा दिए, और ये भी बता दिया कि कौन सी चीज मुजिर है और कौन सी चीज मुजिर नहीं, और गुस्से की शर से बचने का क्या तरीका है। अब हर इंसान को अपने हिसाब से उन पर अमल करने की जरूरत है, और अमल करने का बेहतरीन रास्ता यह है कि किसी शेख से इस नियत से राबता रखे कि मुझे इन रजाइल की, इन बीमारियों की इसलाह करानी है, और फिर उनसे मशवरा लेता रहे। उसके नतीजे में अल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता इन रजाइल को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे रजाइल को दूर फरमा दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।